ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल नागरिकता प्रथम संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा द्वारा हुआ पारित। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सरकार में सहभागिता और चुनावी तालमेल के बारे में हुआ विचार विमर्श। और अमेरिका ने की ताइवान के साथ औपचारिक वार्ता, व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संदेश सहित वापस भेजे गए नागरिकता विधेयक 2079 को बहुमत से पारित किया है। सरकार द्वारा ज्यों का त्यों ही आगे बढ़ाया गया विधेयक मत विभाजन के जरिए बहुमत से पारित हुआ। मत विभाजन किए जाने पर विधेयक के पक्ष में 135 मत और विपक्ष में 60 मत दिए गए थे। इससे पूर्व विधेयक के ऊपर विचार विमर्श में उठे सवालों के जवाब देते हुए गृहमंत्री बालकृष्ण खाड ने कहा कि विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए विषय में तत्काल सहमति की संभावना न होने के कारण सरकार ने पुरानी ही अवस्था में विधेयक को वापस बढ़ाया है। गृहमंत्री खाड ने यह भी कहा कि सहमति के लिए और अधिक समय बिताने पर नागरिकता से वंचित होने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और शिक्षा, रोजगारी और अन्य वित्तीय विकास के अवसरों से उनके वंचित होने के कारण राज्य को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए विधेयक को रोकना मुनासिब नहीं होगा। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी समिति की बैठक की कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए टल गई है। पदाधिकारियों के बारे में निराकरण के उद्देश्य से आज सुबह 9 बजे के लिए बुलाई गई बैठक लंबित होकर शाम 6 बजे के लिए तय हुई, लेकिन प्रतिनिधि सभा में नागरिकता विधेयक पर बहस और मतदान को लेकर आज के लिए घोषित बैठक को कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया। ये बात कार्यालय के सचिव डोर प्रसाद उपाध्याय ने बताई। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सत्ता गठबंधन में सहभागिता और अन्य समसामयिक विषय में विचार विमर्श किया। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में विचार विमर्श के दौरान उनके बीच सत्ता गठबंधन में सहभागिता और चुनावी तालमेल लगात विषय में बातचीत हुई थी। ये बात लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो ने बताई। प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श में लोकसभा के अध्यक्ष महंत ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, नेता शरद सिंह भंडारी, अनिल कुमार झा लगायत सहभागी थे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने कहा कि देश में उत्पादित हो सकने वाली चीजों का भी आयात करना पड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय और नेपाली सेना के प्रबंध रथी विभाग द्वारा आयोजित नेपाल में खाद्य सुरक्षा की अवस्था विषयक सेमिनार के समापन समारोह में प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि देश में ही पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्रियों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कर खाद्य तक सभी की पहुंच और आंतरिक खाद्य की मांग को देश से पूरा करने के लिए प्रेरित होना बहुत जरूरी है। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 8 मापदंड तैयार किए हैं। पार्टी की कल हुई 35वीं सचिवालय बैठक ने मॉरिशस 4 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव में उम्मीदवार बनने वालों के लिए मापदंड संबंधी निर्णय किया। निर्णय के मुताबिक चुनाव में उम्मीदवारों के लिए पार्टी की कार्यदिशा, नीति और कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध, विद्रोह में सक्रिय भूमिका, पार्टी में योगदान, स्वच्छ छवि, जनता में स्थापित अच्छी कार्यक्षमता लगायत मापदंड निर्धारित किए गए हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन को एकीकृत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा चुका है। शहीद रामवृक्ष यादव के 28वें स्मृति दिवस के अवसर पर पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेडिस डाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि समाजवाद की यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को एक होना होगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट शक्तियों का ध्रुवीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया आगामी चुनाव के बाद रफ्तार से आगे बढ़ेगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
तपाईँ एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि आगामी चुनाव में एमाले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। झापा के चंद्रगढ़ी विमानस्थल पर आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए एमाले को किसी भी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने कहा कि संहिता का क्रियान्वयन करने के लिए तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। आज धनगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय संरचनागत संहिता का क्रियान्वयन करने के विषय में प्रदेश सरकार और स्थानीय तहों को भी आईन नीति बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मिलेनियन चैलेंज अकाउंट नेपाल विकास समिति ने आज काठमांडू में प्रेस मीट बुलाकर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी क्रियान्वयन की पिछली स्थिति के विषय में जानकारी कराई। बता दें कि एमसीए नेपाल के सभी परियोजनाएं आने वाले अगस्त महीने से क्रियान्वयन में लाई जाएंगी। चितवन के भरतपुर में 100 शैया की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सहित के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ है। एक प्रदेश में एक सुविधा संपन्न आयुर्वेद अस्पताल बनाने की सरकार की नीति के मुताबिक भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 शिवनगर में अस्पताल निर्माण शुरू किया गया है। शहरी तथा भवन निर्माण परियोजना कार्यालय के प्रमुख इंजीनियर प्रकाश अर्याल से मिली जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण के लिए 55 करोड़ बजट सहित बहुवर्षीय खरीद गुरु योजना स्वीकृत हो चुकी है। बता दें कि नेपाल में काठमांडू के नरदेवी में 100 शैया और सुदूर पश्चिम में 50 शैया आयुर्वेद अस्पताल संचालन में है। आज देशभर में कोरोना के 542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 421 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,265 हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो जल्द ही ताइवान के साथ औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू करेगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद चीन ने ताइवान के आसपास कई दिनों तक व्यापार सैन्य अभ्यास भी किया था। अमेरिका के मुताबिक पहले दौर की बातचीत में व्यापार में सहूलियत, डिजिटल ट्रेड और भ्रष्टाचार निरोधक पैमाने को लेकर चर्चा होगी। पेलोसी की यात्रा को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल नागरिकता प्रथम संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा द्वारा हुआ पारित। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सरकार में सहभागिता और चुनावी तालमेल के बारे में हुआ विचार विमर्श। और अमेरिका ने की ताइवान के साथ औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।